द्वितीय उल्लास शब्दार्थ विभाग। प्रथम उल्लास में काव्य स्वरूप विवेचन के अवसर पर शब्दार्थों काव्यम कहा था, अब द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ का विभाग करते हैं। प्रथम उपस्थिति का विषय होने से और अर्थ का उपजीव्य होने से शब्द का पहले निरूपण करते हैं। त्याग वाचको लाक्षणिक शब्दोत्र व्यंजक त्रिधा। यहाँ वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक तीन प्रकार का होता है। अन्य शास्त्रों में व्यंजक शब्द नहीं माना जाता है, परंतु काव्य में तो व्यंजक के बिना चमत्कार ही नहीं आता। अतः काव्य में तीन प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। यहाँ यह विभाग केवल उपाधिकृत है, शब्दों का नहीं, क्योंकि एक ही गंगा शब्द वाचक भी है, लाक्षणिक भी और व्यंजक भी। अर्थ का विभाग, जिस प्रकार उपाधि भेद से शब्द तीन प्रकार का होता है, उसी प्रकार अर्थ भी तीन प्रकार के होते हैं। वाच्यादय सदर्थाः स्युः, वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य उन वाचक लक्षक तथा व्यंजक शब्दों के अर्थ होते हैं। इन वाचक लक्षक तथा व्यंजक शब्दों के वाच्य लक्ष्य व व्यंग्य ये अर्थ हैं। जिस प्रकार ये वाच्य आदि पदार्थ व्यंजनावृत्ति के आश्रय होते हैं, उसी प्रकार वाक्यार्थ भी व्यंजनावृत्ति का आश्रय है। पर वाक्यार्थ के बोध के लिए किसी वृत्त विशेष का निरूपण करना चाहिए। इसी न्यूनता के परिहार के लिए मम्मट प्राचीन न्यायिकों के द्वारा स्वीकृत अथवा कुमारिल भट्ट आदि मीमांसकों के द्वारा प्रतिपादित तात्पर्य वृत्ति प्रतिपाद्य तात्पर्यार्थ का भी निर्देश कर रहे हैं। तात्पर्यार्थोपिकेषुचित्, किन्हीं कुमारिल भट्ट आदि के मत में वाच्यादि अर्थों के अतिरिक्त तात्पर्यार्थ भी होता है। अर्थात कुमारिल भट्ट आदि अभिहितान्वयवादी में मानसिक पदार्थों के परस्पर संबंध बोध के लिए तात्पर्य नाम की एक अलग वृत्ति मानते हैं। इस तात्पर्य वृत्ति का प्रतिपाद्य वाक्यार्थ है और वाक्य इसका बोधक अभिहितान्वयवादी कुमारिल भट्ट आदि मीमांसकों का कहना है कि अविधा तो केवल पदार्थ के बोध में समर्थ है। वाक्यार्थ रूप जो पदार्थ का परस्पर अन्वय संबंध विशेष है, उस संसर्ग का बोध तो तात्पर्य नाम की वृत्ति से ही हो सकता है। इसलिए तात्पर्य नाम की वृत्ति को भी मानना चाहिए। इसके विपरीत कुमारिल भट्ट के शिष्य प्रभाकर गुरु और उनके मतानुयायी वाक्यार्थ बोध के लिए तात्पर्य नाम की वृत्ति को नहीं मानते, वे अन्वित पदों में ही शक्ति मानते हैं। इनके अनुसार पदार्थों का परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थ वाच्य ही होता है। वाच्य एवं वाक्यार्थ इति अन्विताभिधानवादिनः, अर्थात अन्वित का ही अभिधान होता है, वाक्यार्थ अभिधा का ही विषय है। इसके लिए पृथक तात्पर्य नाम की वृत्ति मानना आवश्यक नहीं है। मीमांसा दर्शन प्रभाकर का मत गुरुमत से प्रसिद्ध है। अभिहितान्वयवाद, अभिहितान्वयवाद, अभिहितान्वयवादियों का कहना है कि सर्वप्रथम पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है, अर्थात पहले पदों के द्वारा पदार्थ अभिहित अभिधा शक्ति द्वारा बोधन हो जाते हैं, बाद में आकांक्षा योग्यता सन्निधि वश इसके सहयोग से अभिहित पदार्थों का अन्वय संसर्ग होता है, जिससे वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। इसी अन्वयांश के बोध के लिए, जिसे कुछ लोग संसर्ग मर्यादा से भाषित मानते हैं, तात्पर्य वृत्ति को मानते हैं। इसी प्रकार अभिहित पदार्थों के अन्वय मानने के कारण इन्हें अभिहितान्वयवादी कहते हैं। पदानि अभिहिताति भूत्वा पश्चाद् विशिष्टमर्थम् बोधयन्तीति ये वदन्ति ते अभिहितान्वयवादिनः। अभिप्राय यह है कि घटम करोति इस वाक्य का अर्थ है घट वृत्ति कर्मत्वानुकूला कृति है। इसमें घट पद का कम्बु ग्रीवादिमान व्यक्ति विशेष घट का अर्थ है, अम प्रत्यय का अर्थ कर्मता करोति का अर्थ कृति है, परन्तु वाक्यार्थ में संसर्ग मर्यादा से या अन्वय बोध से भाषित होने वाले वृत्तित्व व अनुकूलत्व तो किसी पद के अर्थ नहीं है। इन्हीं की वाक्यार्थ में उपस्थिति के लिए तात्पर्य वृत्ति की आवश्यकता होती है। वृत्ति ग्रंथ में अभिहितान्वयवादिनाम मतम इस बहुवचन से ग्रंथकार की इसी मत में सम्मति है, यह बात ध्वनित होती है। अन्विताभिधानवाद, अन्विताभिधानवाद के प्रतिपादक आचार्य प्रभाकर हैं। इनके मत में पदार्थ पहले अभिहित हो फिर उनका परस्पर अन्वय होता हो, यह बात नहीं, अपितु पहले से अन्वित पदार्थों का ही अभिधा से बोध हो जाता है। अन्वय पूर्व सिद्ध होने के कारण इसके लिए पुनः तात्पर्य वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। प्रभाकर का कहना है कि सर्वप्रथम बालक को संकेत ग्रह या पदार्थों का ज्ञान वाक्य से ही होता है, क्योंकि बालक को तत्त्व पदार्थों का ज्ञान या संकेत ग्रह व्यवहार से होता है, और यह व्यवहार वाक्य द्वारा ही होता है, क्योंकि प्रयोजक वृद्ध को जो कुछ भी उपदेश देता है वह वाक्य द्वारा ही देता है, और बालक चुपचाप इनकी चेष्टाओं या व्यवहार का अनुशीलन करता है। जैसे किसी वृद्ध ने किसी को आज्ञा दी कि गाय ले आओ या कलम ले आओ, बालक को इनमें से किसी भी पद का ज्ञान नहीं है, न वह कलम जानता है न ले आओ ही। इसी प्रकार संस्कृत में गामान है, यह वाक्य है, बालक को गो पद के भी अर्थ का ज्ञान नहीं है और आने इस पद का भी अर्थ ज्ञान नहीं है। परंतु जब बालक व्यवहार को देखता है कि अमुक शब्द के उच्चारण करने से मध्यम वृद्ध अमुक अमुक वस्तु को ला रहा है, तो अन्वित पद या वाक्य से ही सर्वप्रथम बालक को ज्ञान होता है, पश्चात पद पदार्थ बोध होता है। इसलिए यह संकेत ग्रह केवल पदार्थ होकर अन्वित पदार्थ में ही होता है, इसलिए इस मत का नाम अन्वित का अभिधान अर्थात अन्वित पद की अभिधा का विषय है। फिर से अन्वय मान भान के लिए तात्पर्यावृत्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में प्रभाकर के मत का यही सार है। अर्थों की व्यंजकता। शब्द शक्तियों का विवेचन प्रायः सभी शास्त्रों में हुआ है। शास्त्रकारों ने अपने अपने विचार से इसका विवेचन किया है। शक्ति के स्वरूप के विषय में भी विभिन्न शास्त्रकारों के परस्पर भिन्न मत हैं। क्योंकि शक्ति का संबंध शब्द से है, इसलिए पद प्रमाण व वाक्य की जिन शास्त्रों में विशेष चर्चा की गई है उन्हीं में शब्द शक्ति के विषय में भी विशेष उहापोह किया गया है। इनमें व्याकरण को पद शास्त्र कहते हैं, क्योंकि पद साधुत्व का अधिक दायित्व व्याकरण पर आता है, और न्याय को प्रमाण शास्त्र कहते हैं। यह शास्त्र प्रत्यक्ष या अनुमान आदि के द्वारा पदार्थों परीक्षण करता है, और वाक्य के विषय विचार करने वाले शास्त्र को मीमांसा शास्त्र कहते हैं। मीमांसा विशेषतः वेद वाक्यों पर विचार करती है, प्रसंगतः लौकिक वाक्यों से संबंधित पद पदार्थों पर भी विचार करती है। अतः प्राधान्य शब्द शक्ति का विषय इन्हीं शास्त्रों का विषय है, पर प्रसंगानुसार अन्य शास्त्रों में भी आनुषंगिक रूप से इस विषय की चर्चा होती है, अतः इन्हीं के अनुसार अन्यत्र भी पद पदार्थ कल्पना की जाती है। वैयाकरण। पद पदार्थ के संबंध विशेष को ही शक्ति मानते हैं। पद में वाचकता शक्ति है और अर्थ में वाच्यता रूप शक्ति है। एक में बोध जनकता है तो दूसरे में बोध विषयता। यह वाच्यवाचक भाव शब्दार्थो भय निष्ठ होगा। जो शब्द है वही अर्थ और जो अर्थ है वही शब्द। इस प्रकार इतरेतराध्यास मूलक तादात में इसी को संकेत कहते हैं। प्राचीन वैयाकरण केवल बोध जनकता को ही शक्ति मानते हैं, जैसे इंद्रियों की अनादिकाल से अपने अपने विषय रूपादि ग्रहण की योग्यता है। इसी प्रकार शब्दों की भी अर्थ के साथ जो बोध जनकता है वही शक्ति है। न्यायिकों के मत में ईश्वर संकेत ही शक्ति है, अर्थात यह पद इस अर्थ का बोधक हो। इस प्रकार की जो ईश्वर इच्छा है वही संकेत या शक्ति है, या इसी वृत्ति के द्वारा अर्थबोधक पद वाच्य और उससे बोध गोत्वादि विशिष्ट अर्थवाच्य है। इसी को मुख्यार्थ भी कहते हैं। मीमांसक शब्द की बोधकता शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं। जिस प्रकार वाहनी में दाहकता शक्ति है, उसी प्रकार शब्द में भी एक अर्थ बोधकता शक्ति है, यही संकेत है, इसलिए ये लोग शक्ति को पदार्थांतर मानते हैं। आलंकारिकों के मत में शब्दार्थ का परस्पर प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव लक्षण संबंध विशेष ही शक्ति है, जैसा कि पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा है, शक्याख्यो अर्थस्य शब्दगतः शब्दस्यार्थगतो वा संबंध विशेषो विधा। वे तीन है, अभिधा, लक्षणा व व्यंजना। आशाधर भट्ट ने अपने त्रिवेणिका नामक ग्रंथ में इन शक्तियों का सरल शब्दों में सुंदर विचार किया है। शक्ति को ही वृत्ति भी कहते हैं। शक्ति वृत्ति ये पर्यायवाचक शब्द हैं। उन्होंने उक्त ग्रंथ के वृत्ति प्रकरण में वृत्ति का विवेचन इस प्रकार किया है, वर्तते शब्दो अर्थे प्रवर्तते अनयेति वृत्ति। जिस माध्यम से शब्द की अर्थ की ओर प्रवृत्ति होती है वही वृत्ति है। यहाँ वृत्तु वर्तनी इस धातु से करण में तीन प्रत्यय लगाकर वृत्ति शब्द की सिद्धि होती है। इसी प्रकार अन्यत जैसे अंतःकरण वाचक बुद्धि शब्द में भी तीन प्रत्यय ही है, और भगवत प्रेम सूचक भक्ति शब्द में भी तीन प्रत्यय करण में ही है, जैसा कि भगवत सुबोधनी में लिखा है, अत्र धात्वर्थ सेवा प्रत्ययार्थ प्रमेत्युक्तम। इसीलिए मल्लिनाथ ने भी रघुवंश की टीका भक्ति प्रतीक्षेषु कुलोचिताते में भक्ति की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वनुरागो भक्ति ऐसा कहा है। साहित्य दर्पण आदि ग्रंथों में वृत्ति के स्थान में शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और लक्षणा के स्थान पर कहीं कहीं भक्ति शब्द का प्रयोग है तथा व्यंजना के स्थान पर व्यक्ति का शब्द का प्रयोग मिलता है। अतः साहित्य शास्त्र में ये शक्ति भक्ति व्यक्ति क्रमशः गंगा यमुना सरस्वती की तरह है। शक्यते साक्षात विधीयते अनयेयेति शक्ति कर्णेक्तिन साक्षात जिससे अर्थ का प्रतिपादन किया जाए वह शक्ति है। भज्यते शक्त्यार्थ खंडयते नयेति भक्तिर लक्षणा भंजो आभादने इस धातु से करण में किन प्रत्यय अथवा भज्यते सेव्यते अर्थांतर मनयेति भक्ति भज सेवायाम इस धातु से किन प्रत्यय अर्थात मुख्यार्थ का खंडन बोध हो जिसमें उसे भक्ति लक्षणा कहते हैं या अर्थांतर का जहाँ बोध हो उसे भक्ति लक्षणा कहते हैं। व्यज्यते प्रकटी क्रियते अर्थो अनेयेति व्यक्तिर व्यंजना व्यंग्यार्थ जिस व्यापार के द्वारा अभिव्यक्त किया जाए उसे व्यक्ति या व्यंजना कहते हैं। साहित्य दर्पणकार कविराज विश्वनाथ ने इन शक्तियों का निर्देश इस प्रकार किया है। वाच्यो अर्थो विधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षण नियामतः व्यंग्यो व्यंजनया ताः स्युस्त्री स्त्रह शब्दस्य शक्तयः वाचक शब्द का स्वरूप इस प्रकार वाचक लक्षण व व्यंजक के अभिधा लक्षणा व व्यंजना वृत्ति के द्वारा क्रमशः वाच्य लक्ष्य व व्यंग्यार्थ प्रतीत होते हैं। यह नियम है कि वृत्ति के बिना किसी भी शब्द से अर्थ का प्रकाशन नहीं हो सकता अतः तत्त्व शब्दों से तत्त्व वृत्ति के द्वारा तत्त्व अर्थों का प्रकाशन होता है। आचार्य मम्मट सर्वप्रथम वाचक शब्द निरूपण करते हुए कहते हैं साक्षात संकेतितम यो अर्थम विधत्ते स वाचकः जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ करता है वह वाचक शब्द कहलाता है। लोक व्यवहार में संकेत सहायक शब्द ही अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है इसलिए जिस शब्द का जिस अर्थ में साक्षात बिना किसी व्यवधान के संकेत ग्रहण होता है वह शब्द उस अर्थ का वाचक होता है। यह संकेत ग्रह अनेक प्रकार से होता है। व्याकरण से भी संकेत ग्रह होता है जैसे धातु पाठ में पढ़ा है भू धातु सत्ता अर्थ में है और सूत्र से जैसे साधकतम करणम आदि साधकतम का करण अर्थ में संकेत ग्रह हुआ। इसी प्रकार पाचक व पाठक आदि का भी निर्णय व्याकरण के द्वारा ही होता है। इसी प्रकार उपमान जैसी गाय है वैसी ही गयो भी होता है। इसी तरह कोश आप्तवाक्य व व्याख्या आदि संकेत ग्रह के उपाय हैं। इन सब में मुख्य रूप से व्यवहार है क्योंकि अधिकांश शब्दों का या सबसे पहले बालक को संकेत ग्रह का व्यवहार से ही ज्ञान होता है जैसा कि अन्विता विधानवादी आचार्य प्रभाकर आदि का मत है। संकेत ग्रह का विषय यह एक समस्या है कि सांसारिक पदार्थों की तो कोई सीमा नहीं है फिर कहाँ कहाँ इनमें संकेत किया जाए क्योंकि जिस पदार्थ या व्यक्ति में संकेत किया जाएगा उसी पदार्थ का ज्ञान होगा तदतिरिक्त पदार्थ का तो ज्ञान होगा नहीं। जैसे यदि कहा जाए कि घट पदार्थ कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ विशेषो बोधव्यः घट पद से कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ का बोध हो तो अस्मात् पदादयम् अर्थो बोधव्य के नियम से घट का ही बोध होगा न कि पट का। यदि प्रत्येक व्यक्ति में संकेत ग्रह किया जाए तो यह असंभव है क्योंकि दुनिया के अनंत व्यक्तियों में संकेत ग्रह संभव नहीं है इसलिए किसी व्यक्ति विशेष में संकेत ग्रह नहीं हो सकता। अनंत व्यक्तियों एकत्र या एक समय में उपस्थिति तो हो नहीं सकती है इसलिए व्यक्ति पक्ष में यह अनंत दोष आ जाता है और दूसरा दोष आता है व्यभिचार नियम का उल्लंघन रूप मान लिया जाए। एकत्र दो चार व्यक्तियों में संकेत ग्रह भी हो गया तो शेष व्यक्तियों का बिना संकेत ग्रह से भी व्यवहार होता रहेगा इस तरह से यह नियम भंग रूपी दूसरा दोष भी आ जाता है अतः व्यक्ति पक्ष में तो कथम अपि संकेत ग्रह बनता नहीं है। इसलिए हमें अब दुनिया के पदार्थों का उपयुक्त विभाजन करना पड़ेगा जिससे तत्त्व वर्ग के सभी पदार्थ आ जाएं और सरलतया समय संकेत ग्रह भी हो जाए। इसमें एक तो व्यक्ति में संकेत ग्रह न करके व्यक्ति की उपाधि या जाति में संकेत ग्रह किया जाए जैसे गो व्यक्ति में न करके गोत्र जाति या उपाधि में संकेत ग्रह किया जाए और यह संकेतिक जात्यादि अर्थ भी चार प्रकार का होता है जाति गुण क्रिया द्रव्य यदृक्षा शब्द आचार्य मम्मट के शब्द में यह शब्दों में यह इस प्रकार है संकेतिस चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव वा संकेतिक अर्थ जाति आदि अर्थात जाति गुण क्रिया और द्रव्य भेदों से चार प्रकार का होता है। यह मम्मट का जात्यादि पक्ष है, मीमांसकों का पक्ष है केवल जाति में ही संकेत ग्रह मानना, अर्थात केवल जाति को ही शब्द का प्रवृत्ति निमित्त व्यवहार का प्रयोजक मानना, न कि गुण क्रिया द्रव्य को भी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे गोत्र जाति में आप संकेत ग्रह करते हैं, इसी प्रकार गुण क्रिया व द्रव्य में भी जाति का अनुसंधान किया जा सकता है। जैसे अनेक गोत्र व्यक्ति में रहने वाला अनुगत प्रत्यय हेतु सामान्य गोत्र एक ही है, इसी प्रकार गुणादि में भी अनेक शुक्ल व्यक्तियों में रहने वाला शुक्लत्व सामान्य और अनेक पाकादियों में रहने वाला पाकत्व सामान्य, अनेक द्वित्वादियों में रहने वाला द्वित्वत्व सामान्य एक ही है। अतः केवल जाति में ही संकेत मानना चाहिए, यह मीमांसकों का जाति पक्ष है। पर ग्रंथकार को यह पक्ष अभीष्ट नहीं है, उन्होंने जाति गुण क्रिया व द्रव्य में ही संकेत ग्रह माना है। इस विषय में उन्होंने व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि का भी का वचन प्रमाण रूप से उद्धृत किया है, चतुष्टये शब्दानां प्रवृत्तिः इति महाभाष्यकार। इस प्रकार जाति गुण क्रिया और द्रव्य इन चारों को प्रवृत्ति निमित्त माना है। यह उपाधि या जाति भी दो तरह की है, वस्तु धर्म और वक्तृयदृच्छा सन्निवेच्छित। वस्तु धर्म भी दो प्रकार का है, सिद्ध और साध्य। यह सिद्ध भी दो प्रकार का है, पदार्थ का प्राण पद और विशेषाधन हेतु। उपाधि का विषय विभाग इस प्रकार है, उपाधि वस्तु धर्म वक्तृयदृच्छा सन्निवेक्षित, साध्य अथवा क्रिया सिद्ध, प्राणप्रद विशेषाधान हेतु। संकेत ग्रह के विषय में नैयायिकों का मत, नैयायिकों के मत में संकेत ग्रह केवल जाति में भी नहीं माना जाता और केवल व्यक्ति में भी नहीं माना जाता। यद्यपि अर्थ क्रियाकारित्व केवल व्यक्ति में ही है न कि जाति में, तथापि व्यक्ति पक्ष संकेत ग्रह मानने से पूर्वोक्त दो दोष आनंत्य व व्यभिचार दोष आ जाते हैं, और केवल जाति में संकेत ग्रह करके यदि व्यक्ति का आक्षेपात ज्ञान कर ले तो भी शाद्याकांक्षा शब्दे नैव पूर्यते। इस नियम के अनुसार अर्थात शब्द शक्ति के लक्ष्य अर्थ का ही शब्द बोध में अन्वय होता है, आक्षेप लभ्य अर्थ का शब्द बोध में अन्वय नहीं होता। इसलिए व्यक्त्याकृति जात यस्तु पदार्थ, इस नियम के अनुसार तद्वान अर्थात जात विशिष्ट व्यक्ति में ही संकेत ग्रह मानना चाहिए। संकेत ग्रह के विषय में बौद्ध मत, बौद्धों के मत में शब्द का अर्थ होता है उपोह, उपोह का अर्थ होता है अत द्रव्यावृत्ति या तद भिन्न भिन्नत्व है। दश घट व्यक्तियों में घटह घटह इस प्रकार की एकाकार प्रतीति का कारण नैयायी जैसे घटत्व सामान्य को मानते हैं, उसी प्रकार बौद्ध भी दस घट व्यक्तियों में जो घटह घटह इस प्रकार की अनुगत प्रतीति होती है उसका कारण उपोह या अघट व्यावृत्ति या घट भिन्न भिन्नत्व को मानते हैं, अर्थात घट से भिन्न सारा जगत और उसका भेद घट में है। इस प्रकार बौद्धों के मत में उपोह ही शब्द का अर्थ या संकेत ग्रह का विषय भूत पदार्थ उपोह ही है। अविधा शक्ति या व्यापार, संकेत ग्रह का विषय भूत अर्थ ही शब्द या का मुख्यार्थ है। इस मुख्यार्थ में शब्द का जो व्यापार होता है उसे अविधा कहते हैं। स मुख्यो अर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारो स्याभिधोच्यते, अर्थात वह साक्षात संकेतिक अर्थ ही मुख्यार्थ है। उस मुख्यार्थ के बोधन कराने में शब्द का जो व्यापार है उसे अविधा व्यापार या अविधा शक्ति कहते हैं। लक्षणा शक्ति या व्यापार, जहाँ किसी प्रसिद्धि या किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ अपने से संबद्ध किसी अन्यार्थ की प्रतीति कराता है उस अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं, और उस लक्ष्यार्थ की बोधिका शक्ति का नाम लक्षणा शक्ति है। इसमें तीन शर्तें हैं, एक मुख्यार्थ का बोध होना, दो मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ कोई न कोई संबंध होना, तीन रूढ़ी अथवा प्रयोजन का होना। मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। मुख्यार्थ का बाध होने पर, उस मुख्यार्थ से लक्ष्यार्थ का संबंध होने पर रूढ़ी अथवा प्रयोजन विशेष से जिस शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है वह मुख्य रूप से अर्थ में रहने वाला परम्परया शब्द में आरोपित व्यापार लक्षणा है। लक्षणा के संबंध में विभिन्न मत, नैयायिकों का मत है कि शब्द का संबंधी लक्षणा है। इनमें प्राचीन नैयायिकों का अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानते हैं और नव्य नैयायिक तात्पर्यानुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानते हैं। विश्वनाथ पंचानन ने न्याय सिद्धांत मुक्तावली में लिखा है, लक्षणा शक्य संबंध तात्पर्यानुपपत्ति ही। मीमांसकों का सिद्धांत है कि शक्यार्थ संबंध के ज्ञान होने से जो अशक्य अर्थ की उपस्थिति है वही लक्षणा है। जैसे गंगा पद से शक्यार्थ प्रवाह का ज्ञान हुआ, उससे पुनः एक संबंधी ज्ञान अपर संबंधी का स्मारक होता है। इस न्याय के अनुसार तीर की स्मृति हो जाती है, यही लक्षणा का स्वरूप है। वैयाकरणों के मत में शक्यतावच्छेदक का आरोप लक्षणा है। वे सांकेतिक अर्थ के धर्म का असंकेतिक अर्थ में आरोप कर लेते हैं। इसी का नाम अन्य के धर्म का अन्य में अभ्यास है। गंगायाम घोष इत्यादि स्थलों में शक्यतावच्छेदक धर्म प्रवाहत्व या गंगात्व का तीर रूप अर्थ में अभ्यास कर लेते हैं और यह तीर रूप अर्थ की उपस्थिति अभिधा द्वारा ही हो जाती है। अतः अभिधा का ही एक भेद लक्षणा है। जैसा कि भर्तृहरि ने लिखा है, अर्थमात्रम विपर्यस्तम शब्द स्वार्थे व्यवस्थितः, अर्थात अर्थमात्र ही बदल जाता है, शब्द अपने रूप में व्यवस्थित ही है। कुछ अलंकारिकों की लक्षणा के विषय में असहमति, जैसे वैयाकरण लक्षणा के पृथक वृत्ति के विषय में उदासीन है। अविधा के ही प्रसिद्ध व अप्रसिद्ध भेद मानकर अप्रसिद्ध भेद को लक्षणा मान लेते हैं। इसी प्रकार कुछ अलंकारिक भी लक्षणा को स्वतंत्र वृत्ति न मानकर अलंकारिकों में ही इसका अंतर्भाव कर देते हैं। जैसे वामनाचार्य ने सादृश्य हेतुक लक्षणा को वक्रोक्ति अलंकार में अंतर्हित कर दिया। सादृश्यालक्षणा वक्रोक्ति ही अलंकार रत्नाकर में शोभाकार मित्र ने तो यहाँ तक कहा है कि सादृश्य प्रयुक्त या संबंधांतर प्रयुक्त जितना भी उपचार का विषय है वह सब रूपक में आ जाता है। सादृश्य प्रयुक्त संबंधांतर प्रयुक्तो वायावान भिन्नयो समानाधिकरण्य निर्देश सर्वोपि रूपकम्। काव्य प्रकाश के अनुसार लक्षण के भेद, लक्षणा के भेदक हेतु हैं रूढ़ी और प्रयोजन, अर्थात लक्षणा के रूढ़िगत भेद और प्रयोजनगत भेद होंगे। रूढ़ी का उदाहरण है कर्मणि कुशलः, कोष्ठक चित्त कर्म या किसी कार्य में कुशल, कोष्ठक बंद। यहाँ कुशल शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कोष्ठक व्याकरण के द्वारा निकलने वाला अर्थ कोष्ठक बंद है। कुशान लाति आदत्ते इति कुशलः, कोष्ठक कुशों को लाने वाला कोष्ठक बंद, प्रकृति में कुशों को लाने वाला इत्यादि अर्थ का कोई संबंध न होने से मुख्यार्थ का बोध होता है। तदनंतर विवेचकत्व आदि संबंध से कुशल पद दक्ष अर्थ में रूढ़ कोष्ठक प्रसिद्ध होने से मुख्य से अन्य अर्थ दक्ष या चतुर अर्थ लक्षित होता है। अतः कर्मणि कुशल या रूढ़ी का उदाहरण है। प्रयोजन का उदाहरण गंगायाम घोष, यहाँ गंगा पद का मुख्यार्थ भगीरथ खातावच्छिन्न जल प्रवाह है। घोष का अर्थ है कुटिया, जल प्रवाह कुटिया का आधार नहीं बन सकता है, अतः यहाँ मुख्यार्थ का बाद होता है। गंगा के साथ तट का सामीप्य संबंध होने पर गंगा तटे घोष इत्यादि पदों के प्रयोग से अलभ्य शैत्य पवनत्वादि धर्म की प्रतीति स्वरूप प्रयोजन से मुख्य गंगा का प्रवाह रूप अर्थ से अमुख्य तीरादि जो लक्षित होते हैं वह शब्द का व्यवहितार्थ विषयक आरोपित शब्द व्यापार लक्षणा है। लक्षणा का रहस्य तात्पर्य यह है कि काव्य नाटक आदि साहित्यिक ग्रंथों में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनसे प्रकाशित होने वाला अर्थ ज्ञान तीन प्रकार का होता है, एक सुंदर, दो सुंदरतर, सुंदरतम। सामान्य जनों की बोलचाल के शब्दों में होने वाला अर्थ ज्ञान सामान्यतः सुंदर है। जैसे देवदत्त गांव को जाता है, यह मुख्यार्थ विषयक अविधा व्यापार जन्य है, इसमें खास चमत्कार नहीं है। लक्षणा जन्य चमत्कार चारुतर या सुंदरतर है। किसी ने अपने मित्र से पूछा, आपका निवास स्थान कहाँ है? उसने उत्तर दिया, गंगा के पास है। तो मित्र ने समझ लिया कि गंगा के आसपास कहीं होगा। इसे उसके घर जाने से क्या फायदा, न तो वहाँ शीतलता है और न पवित्रता। फिर दूसरे मित्र ने पूछा कि आपका निवास स्थान कहाँ है? तो उसने उत्तर दिया, गंगा में ही मेरी कुटिया है। अब इसे विश्वास हो गया कि गंगा से ज्यादा दूर नहीं है, अवश्य शीतत्व पावन स्वातिशय की प्राप्ति हो सकती है। मित्र उसके घर चलने को राजी हो गया। यह शब्द प्रयोग की विशेषता है कि एक जगह अभिष्ट प्रयोजन की प्रतीति हो जाती है और एक जगह नहीं हो रही है। प्रथम मित्र का कथन अभिधा का विषय है जिसमें शैत्य पावनत्वातिशय की प्रतीति नहीं होती है। दूसरे मित्र का कथन लक्षणा का विषय है जिसमें श्रोता को सुनते ही अपने अभीष्ट प्रयोजन पर विश्वास हो जाता है। वाचक व लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग में यही अंतर है, अन्यथा शब्द प्रयोग तो स्वायत्त है, क्योंकि अवाचक शब्दों का प्रयोग गंगा प्रयोग किया जाए, गंगायाम घोष, गंगा में कुटिया है इत्यादि स्थलों में, यद्यपि लक्षणा शक्ति का विषय तट ही है, क्योंकि लक्षणा की पहुँच ही तट तक है, उससे अधिक जो शैत्य पावनत्वातिशय का ज्ञान तो व्यंजना व्यापार का विषय ही है, पर यह व्यंजना यहाँ लक्षणा मूला है, इसलिए इस प्रयोजन को लक्षणा का फल भी कहते हैं। यह प्रयोजन या फल हमेशा व्यंग ही होता है, अतएव यह लक्षणा का उदाहरण सुंदरतर है। निरूढ़ा लक्षणा या रूढ़ी लक्षणा में कोई प्रयोजन होने से अभिधा व्यापार की तरह वह पद सामान्य रूप होने से सुंदर है। लक्षणा के अवान्तर भेद, यह लक्षणा उपादान लक्षणा व लक्षण लक्षणा के भेद से पुनः दो प्रकार की होती है। उपादान लक्षणा जहाँ वाक्य में स्थित पद अपने संबंध की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का उपादान ग्रहण करते हुए अन्य अर्थ का भी आक्षेप किया जाए, वहाँ उपादान लक्षणा होती है। कुंता प्रविशंति इसका उदाहरण है। यहाँ कुंत अपने प्रवेशन क्रिया की सिद्धि के लिए अपने से संयुक्त कुंतधारी पुरुषों का आक्षेप होता है और स्वयं कुंतों का भी उपादान ग्रहण होता है, इसलिए यह उपादान लक्षणा का उदाहरण है। कुंतों की अति गहनता ही यहाँ प्रयोजन है। लक्षण लक्षणा वाक्य में दूसरे की अन्वय की सिद्धि के लिए जहाँ अपने मुख्यार्थ का परित्याग करना पड़ता है उसे लक्षण लक्षणा कहते हैं। इसका उदाहरण गंगायाम घोष है। यहाँ गंगा शब्द पर घोष की आधारत्व सिद्धि के लिए अपने प्रवाह रूप मुख्यार्थ का परित्याग कर सामीप्य संबंध से अन्य तटार्थ का बोध कराता है, अतएव यह लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। शैत्य पावनत्वातिशय की प्रतीति प्रयोजन है। ये दोनों उदाहरण स्वसिद्ध है। पराक्षेपा रूप उपादान लक्षणा का कुंता प्रविशंति यह और परार्थ स्वसमर्पण रूप लक्षण लक्षणा का गंगायाम घोष यह, ये दोनों शुद्धा के ही भेद हैं, क्योंकि यहाँ उपचार का मिश्रण नहीं है। जहाँ सादृश्य मूलक कोई संबंध होता है वही उपचार होता है, उक्त स्थलों में तो सामिप्यादि संबंध है, अतः ये शुद्धा के भेद हैं। विभिन्न पदार्थों का किसी सादृश्यातिशय के द्वारा जहाँ परस्पर भेद प्रतीत का स्थगन हो जाए उसे उपचार कहते हैं, जैसे अग्निर्माणवक इत्यादि स्थल में उपचारो ही नमात्यंतम विषकलितयोः शब्दयोः सादृश्यतिशय महिमना भेद प्रतीति स्थान मात्रम। मुकुल भट्ट के उपादान लक्षणा के उदाहरणों का खंडन। मुकुल भट्ट ने अपने ग्रंथ अभिधा वृत्ति मात्रिका में उपादान लक्षणा के दो उदाहरण दिखलाए हैं, एक गौरव नुबंध्य, दूसरा पीनो देवदत्तो दिवा न भुंगते। प्रथम उदाहरण गौरव नुबंध्य, यहाँ पर मुकुल भट्ट का कहना है कि श्रुति चोदित अनुबंधन यहाँ गोत्व जाति का तो हो नहीं सकता है, अतः उपादान लक्षणा के द्वारा मुख्यार्थ जाति से अन्यार्थ व्यक्ति का आक्षेप किया जाता है। इस पर मम्मट का कहना है कि यहाँ उपादान लक्षणा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थलों में तो आक्षेप का अनुमान से ही व्यक्ति का लाभ हो जाता है। प्रयोजन व रूढ़ी के न होने के कारण यहाँ लक्षणा की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण पीनो देवदत्तो दीवाना भुंगते, यह भी उपादान लक्षणा का उदाहरण है, उदाहरण नहीं हो सकता। यह श्रुतार्थापत्ति या अर्थापत्ति का विषय है। शुद्धा तथा गौणी विषयक मुकुल भट्ट का सिद्धांत। मुकुल भट्ट के अनुसार गौणी लक्षणा में तो सादृश्यातिशय के कारण लक्ष्य तथा लक्षक की अभेद प्रतीति होती है, जैसे गौरवाहिक में गौ तथा वाहिक अर्थों में अभेद प्रतीत होती है, तभी उन दोनों पदों का समानाधिकरण्य होने के समान विभक्ति में प्रयोग होता है, परंतु शुद्धा लक्षणा में तो अर्थात उपादान लक्षणा व लक्षण लक्षणा में गंगायाम घोष इत्यादि स्थलों में लक्ष्य तट तथा लक्षक गंगादि शब्दों में तो अभेद नहीं अपितु भेद रूप तटस्थ की ही प्रतीति होती है। अतः शुद्धा तथा गौणी का भेदक धर्म यही है। एकत्र शुद्धा में लक्षक लक्ष में भेद प्रतीति तथा अन्यत्र गौणी में लक्षक व लक्ष में अभेद की प्रतीति, यही इन दोनों में अंतर है। मम्मट द्वारा तटस्थ सिद्धांत का निराकरण। मम्मट को मुकुल भट्ट का शुद्ध गौड़ी के विषय में तटस्थ सिद्धांत अभिमत नहीं है। उनका कहना है कि शुद्धा के भेद में भी लक्षक व लक्ष्य में अभेद प्रतीति ही होती है, फर्क सिर्फ इतना ही है, एकत्र गौणी में उपचार का मिश्रण रहता है और अपरत शुद्धा में उपचार का मिश्रण नहीं रहता है। यदि शुद्धा के उदाहरण गंगायाम घोसा इत्यादि स्थलों में लक्षक व लक्ष्य में अभेद प्रतीति नहीं मानोगे तो तट में गंगात्व की प्रतीति नहीं हो सकेगी। तट के साथ केवल गंगा का संबंध मात्र मानने से तो गंगा या तटे घोष, गंगा के किनारे घोष है, इस मुख्य शब्द के कथन से लक्षणा का भेद ही क्या रह जाएगा। शुद्धा तथा गौणी के भेद, जहाँ आरोप्यमाण तथा आरोप्य विषय दोनों शब्दतः कथित होते हैं, वहाँ दूसरी सारोपा लक्षणा होती है। सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषय विषय तथा और आरोप्यमाण के द्वारा यहाँ उपमेय को निर्गिण किया जाए, अर्थात उपमान वाचक पद के द्वारा ही उपमेय का भी बोध कराया जाए, उसे साध्यवसाना लक्षणा कहते हैं। विषयंतः कृते यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका, यदि यह आरोप व अध्यवसान सादृश्य मूलक हो तो गौणी की लक्षणा होगी, यदि किसी संबंधांतर से हो तो शुद्धा लक्षणा होगी। उपादान गौणी सारोपा का उदाहरण है गौरवाहिक, यहाँ गौ तथा वाहिक दोनों के समान गुणों के आश्रय रूप से वाहिक अर्थ ही लक्षणा द्वारा उपस्थित होता है। यहाँ गौ आरोप्यमाण उपमान है और आरोप विषय उपमेय है, वाहिक दोनों में जांग यमान व्यादि गुणों की समानता के कारण वाहिक में गौ का आरोप किया है। दोनों का निर्देश शब्दतः होने से सारोपा गौणी का उदाहरण है। लक्षण लक्षणा गौणी साध्यवसाना का उदाहरण गोरयम है, यहाँ आरोप्यमाण गौ के द्वारा आरोप विषय उपमेय वाहिक का निर्गीण हो चुका है, साथ ही साथ पूर्वोक्त जाड्यादि गुणों के द्वारा समानाधिकरण भी है, अतः यह उदाहरण गौणी साध्यवसाना लक्षणा का है। शुद्धा सारोपा का उदाहरण आयुर्घृतम घी आयु है, यहाँ आरोप्यमान उपमान आयु व आरोप विषय उपमेय घी दोनों का शब्दतः निर्देश है और यहाँ सादृश्य से अतिरिक्त कार्य कारण संबंध है, अर्थात घी कारण है और आयु कार्य है। घी खाने से सादृश्य आयु बढ़ती है और इसी का प्रयोजन भी है। शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण आयु रे वेदम, यह घी आयु ही है, यहाँ आरोप विषय घी का आरोप्यमाण उपमान आयु के द्वारा निर्गिण हो चुका है, अतः यह उदाहरण शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा का है। निश्चित रूप से आयु बढ़ाना सम प्रयोजन पूर्वत है। लक्षणा तेन षड विद्या, इस प्रकार पूर्व भेद उपादान लक्षणा व लक्षण लक्षणा सारोपा व साध्यवसाना ये शुद्धा के चार भेद हैं और गौणी के केवल दो भेद सारोपा व साध्यवसाना सब मिलकर छह भेद हुए। इनका विषय विभाग इस प्रकार है लक्षणा एक शुद्धा दो गौणी। शुद्धा उपादानल लक्षण लक्षण सारोपा साध्यवसाना गौणी सारोपा साध्यवसाना। पुनः व्यंग्य की दृष्टि से लक्षणा का विभाग, यह लक्षणा पुनः अव्यंग्य गुढ़व्यंग्या अगुढ़व्यंग्या तीन प्रकार की होती है, रूढ़ में कर्मणि कुशल इत्यादि स्थलों में व्यंग्या से रहित होगी और प्रयोजनवती लक्षणा व्यंग्य सहित होगी, वह प्रयोजन भी कहीं गुढ़ होगा और कहीं अगुढ़। गुढ़ प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण मुखम विकसितम स्मितम इत्यादि है, यह किसी इंदु वदना की तरुणिमा का सुंदर वर्णन है। इस सुंदरी का मुख स्मित ईषद हास्य से विकसित है, यहाँ विकास पुष्प का धर्म है, इसको स्मित में बांध होने से लक्षणा के द्वारा स्मित की सातिशयता लक्षित होती है। इससे मुख में सौरभादि व्यंग्य है, यह व्यंग्य सर्वजन वेद्य न होने के कारण गूढ़ है। अगूढ़ व्यंग्य प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण श्री परिचया जड्डा अपि भवन्ति विज्ञा विदग्ध चरितानाम उपदिशति कामिनीनाम यौवन मद एव ललितानि। लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाने पर मूर्ख भी चतुरों के व्यवहार को समझने वाले हो जाते हैं। कोष्ठक पुनः अर्थांतर न्यास से इसका समर्थन करते हैं। कोष्ठक बंद, जैसे यौवन मद ही कामिनियों को ललित उपदेश कर देता है, यहाँ उपदिशति यह पद अगूढ़ व्यंग्य है, क्योंकि शब्द द्वारा अज्ञातार्थ का ज्ञापन रूप उपदेश तो चेतन का धर्म है न कि जड़ यवन मत का। अतः मुख्यार्थ का बाद होने से सामान्य विशेष रूप संबंध से उन चेष्टाओं का आविष्कार मात्र लक्ष्य है। अनायास ललित चेष्टाओं का ज्ञान यह व्यंग्य वाच्यार्थ की तरह स्पष्ट मालूम पड़ता है। इस प्रकार काव्य प्रकाशकार के मत से 6 प्रयोजनवती लक्षणाएं पूर्व वर्णित है। इसके प्रयोजन स्वरूप व्यंग के गुढ़ागुढ़ होने से ये 12 प्रकार की हो गयी। रूढ़ी का केवल एक भेद है, सब मिलाकर 13 प्रकार की लक्षणा हुई। साहित्य दर्पणकार ने मम्मट के 6 भेदों के स्थान पर 16 भेद माने हैं। उन्होंने रूढ़ी तथा प्रयोजन को भी भेद का कारण माना है। इस प्रकार उपादान लक्षणा दोनों के रूढ़िगत व प्रयोजनगत होने से 4 भेद हो जाते हैं। फिर इन चारों में सारोपा और साध्यवसाना मान लेने से 8 भेद हो जाते हैं। इन 8 में शुद्धा तथा गौणी के भेद से 16 प्रकार की लक्षणा हो जाती है। पुनः इन भेदों के व्यंग के गुढ़ागुढ़ होने से और धर्मगत होने से पद व वाक्यगत लक्षणा के मानने से 80 प्रकार के भेदों के विश्वनाथ ने दिखलाया है। लक्षणिक शब्द इस प्रकार लक्षणा के अवान्तर भेदों का निरूपण करके अब पूर्व प्रसंग से अनुकृष्ट लाक्षणिक शब्द का विवेचन करते हैं। उस लक्षणा शक्ति का आश्रय भूत यह गंगादि शब्द लाक्षणिक कहलाता है। तात्पर्य है कि प्रवाह रूप अर्थ का वाचक गंगादि शब्द लक्षणा शक्ति की परिधि में आ जाने से उपचारवश लाक्षणिक कहलाता है। तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक उस लाक्षणिक शब्द के द्वारा जब शैत्य पावनत्वादि प्रयोजन का प्रतिपादन करना पड़ता है तो व्यंजनात्मक व्यापार की आवश्यकता होती है। अर्थात प्रयोजन केवल व्यंजना व्यापार का ही विषय है। प्रयोजन की प्रतीति में व्यंजना वृत्ति की अपरिहार्यता, क्योंकि जिस प्रयोजन की प्रतीति के लिए लाक्षणिक शब्द का आश्रय लिया जाता है केवल उसी लाक्षणिक शब्द द्वारा गम्य उस फल के विषय में व्यंजना के अतिरिक्त का अन्य कोई व्यापार नहीं हो सकता है। यस्य प्रतीति माधातुम लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्ये अत्र व्यंजना न पराक्रिया। उक्त प्रयोजन की प्रतीति न तो अभिधा वृत्ति से हो सकती है क्योंकि पावनत्वादि प्रयोजनों के प्रतिपादक गंगादि शब्दों में इस प्रकार का संकेत ग्रह नहीं किया गया है और मुख्यार्थ बाधादि हेतुओं के न होने से लक्षणा वृत्ति का भी विषय नहीं है। लक्षणा वृत्ति प्रयोजन की प्रतीति तब कराती है जब यहाँ लक्ष्यार्थ ही मुख्यार्थ माना जाता, पर यहाँ तो तट रूप मुख्यार्थ नहीं है, न उसमें किसी प्रकार का बाध ही है और न शैत्य पावनत्वादि फल के साथ उसका कोई संबंध ही है। फिर प्रयोजन को लक्ष्यार्थ मानने में आगे कोई अन्य प्रयोजन भी नहीं है। यदि प्रयोजन सहित तट को लक्षणा का विषय माना जाए तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि विषय और फल में भेद होता है। जैसे ज्ञान का विषय ज्ञान के फल से भिन्न होता है, उसी प्रकार लक्षणा ज्ञान का विषय तट है और लक्षणा ज्ञान का फल पावनत्वादि, ये दोनों परस्पर भिन्न हैं। अतः प्रयोजन विशिष्ट तट लक्षणा व्यापार का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानस्य विषयो यन्य फलमन्य दुदाहृतम, अर्थात ज्ञान का विषय अलग और ज्ञान का फल के मत में अनुव्यवसाय और मीमांसकों के मत में ज्ञातता अलग कहे गए हैं। न्याय का अनुव्यवसाय सिद्धांत, न्याय सिद्धांत के अनुसार पहले घटा या नीलादि पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा हो जाता है। अयम घट इस प्रकार का ज्ञान, पश्चात घट विषय ज्ञान वाहनम या घट महम जानमी, इस प्रकार का यह दूसरा ज्ञान अनुव्यवसायात्मक ज्ञान कहा जाता है। पहला ज्ञान विषय घट से उत्पन्न होता है, इसलिए यह व्यवसायात्मक ज्ञान है। दूसरा ज्ञान घट ज्ञान से उत्पन्न होता है, इसलिए यह अनुव्यवसायात्मक ज्ञान कहलाता है। इसी को दूसरे शब्दों में समवित्ति भी कहते हैं। यह दूसरा ज्ञान घट ज्ञान का फल हुआ, अर्थात घट ज्ञान के विषय घट से उस घट ज्ञान का फल अनुव्यवसाय भिन्न है, इसलिए विषय और फल दोनों की समकालीन उपस्थिति नहीं होती है। मीमांसकों का ज्ञातता सिद्धांत, मीमांसकों के मत में अयम घट इस प्रकार के ज्ञान होने के बाद ज्ञातो मया घट इस प्रकार की प्रतीति होती है। इस प्रतीति में घट में रहने वाला ज्ञानता या प्रकटता नामक धर्म भासता है। यह धर्म घट ज्ञान के पहले घट में नहीं था, घट ज्ञान के बाद आया, अतः वह ज्ञान से उत्पन्न होने से ज्ञान उसका कारण है, अन्यथा जातता की अनुपपत्ति है। इसी अन्यथानुपपत्ति के द्वारा ज्ञातता से ज्ञान का ग्रहण होता है। न्यायिकों का अनुव्यवसाय जैसे आत्मा में रहने वाला धर्म है, वैसे ही मीमांसकों का यह ज्ञातता धर्म घटादि विषय में रहने वाला धर्म है। यही इन सिद्धांतों में भेद है। दोनों ही मतों में ज्ञान का विषय ज्ञान के फल से भिन्न होता है, क्योंकि विषय ज्ञान का कारण है, इसलिए उसकी स्थिति ज्ञान के पहले रहती है। फल ज्ञान का कार्य है, इसलिए यह ज्ञान के बाद होता है। इसलिए लक्षणाजन्य ज्ञान के विषय तटादि का उसके फल पुण्यत्व मनोहरत्व आदि या शैत्य पावनत्वादि की स्थिति भी अलग है। उन दोनों की समकालीन उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए विशिष्ट अर्थात प्रयोजन सहित तट में लक्षणा नहीं हो सकती है। हाँ, लक्षित तटादि में विशेष शैत्य पावनत्वादि हो सकते हैं। यह लक्षणा मूला व्यंजना का प्रकरण समाप्त हुआ। अविधा मूला व्यंजना। अनेकार्थक शब्दों का संयोग आदि द्वारा एक अर्थ में नियंत्रण हो जाने पर भी उसी शब्द से यदि पुनः अन्यार्थ की प्रतीति होती हो तो उस प्रतीति का कराने वाला शब्द व्यापार अविधा मूला व्यंजना के नाम से कहा जाता है। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यै वाच्यार्थधिकृत व्यावृत्ति रंजनम्। अनेकार्थक शब्दों के विषय में भी यह संदेश हो कि किस अर्थ को लिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये संयोग आदि 14 तत्व नियामक होते हैं। एक जैसे संयोग शंख चक्र के सहित हरि यदि कहा जाए तो यहाँ हरि शब्द अनेकार्थक विष्णु इत्यादि वाचक होता हुआ भी संयोग के द्वारा विष्णु का ही वाचक होगा, क्योंकि शंख चक्र का संयोग विष्णु में ही रहता है। दो, इसी प्रकार वियोग भी नियामक होता है। यदि अशंख चक्रो हरि कहेंगे तो वियोग के द्वारा भी हरि शब्द विष्णु का ही वाचक होगा, क्योंकि संयोग पूर्वक ही वियोग होता है। तीन, साहचर्य राम लक्ष्मणों में साहचर्य सद्भाव के कारण दोनों दशरथ पुत्र के वाचक होंगे। विरोधिता रामार्जुन गतिस्तयो इत्यादि स्थल विरोध नियामक है। राम और अर्जुन इन दोनों शब्दों का विरोधिता के कारण परशुराम तथा कार्तवीर्य अर्थ होगा। अर्थ अर्थात प्रयोजन, संसार में मुक्ति के लिए स्थाणु का भजन करो। यहाँ स्थाणु शब्द प्रयोजन विशेष मुक्ति अर्थ के कारण शिव इस अर्थ में नियंत्रित हो जाएगा। छह, प्रकरण देवो जानाति। देव यह शब्द अनेकार्थक है, पर प्रकरण वश आप इस अर्थ में नियमित हो जाएगा। लिंग मकर ध्वज कुपित हो रहा है इत्यादि स्थलों में कोप चिन्ह के द्वारा मकर ध्वज शब्द कामदेव अर्थ में ही नियंत्रित हो जाएगा। आठ, अन्य शब्द की सन्निधि पुरारी देव का यहाँ पुरारी शब्द के सानिध्य से देवशंकर अर्थ ही होगा। सामर्थ्य कोकिल मधु से मत्त हो रहा है, यहाँ कोकिल को मत करने का सामर्थ्य केवल वसंत में होने से मधु शब्द का वसंत अर्थ होगा। दस, औचित्य पत्नी का मुख तुम्हारी रक्षा करे, इसमें अनेकार्थक मुख शब्द औचित्य के कारण सामुख्य अनुकूल अर्थ में नियंत्रित होगा। देश यहाँ परमेश्वर शोभित है, इसमें राजधानी रूप देश विशेष के कारण अनेकार्थक परमेश्वर शब्द का राजा अर्थ होगा। बारह, काल चित्रभानु चमक रहा है, यहाँ अनेकार्थक चित्रभानु शब्द का दिन में सूर्य अर्थ और रात में काल विशेष के कारण अग्नि अर्थ होगा। तेरह, व्यक्ति मित्रम भाति में नपुंसक लिंग होने के कारण मित्र शब्द का सुहृद सखा आदि और पुलिंग में मित्रो भाति होने से सूर्य अर्थ लिया जाएगा। चौदह, इंद्र शत्रु वर्धस्व इत्यादि स्थलों में सूर्य का स्वर का उपयोग होता है, अर्थात वेद में ही स्वर विशेष से अर्थ विशेष का बोध होता है, काव्य में स्वरों का विशेष उपयोग नहीं होता है। इसी तरह चेष्टादि से भी किसी विशेष अर्थ की प्रतीति होती है। इस प्रकार संयोगादि से अब जब अनेकार्थक शब्दों का एक अर्थ में नियंत्रण हो जाता है, पुनः यदि उसी शब्द से अर्थांतर की प्रतीति होती है तो उसमें अविधा व्यापार न होकर व्यंजना व्यापार ही होता है। इसी को अविधा मूला व्यंजना कहते हैं। उदाहरण भद्रात्मनो दुर्धिरो हतनोर विशाल वंशोन्नतेह कृतशीली मुख संग्रहस्य यस्यानुपप्लवगतेह परवारणस्य दानाम्बुशेक सुभगः सततम् करो भूत। इस श्लोक में किसी राजा की स्तुति की जा रही है, अतः इन अनेकार्थक शब्दों का भद्रात्मनों सुंदर आत्मा वाले हाथी के पक्ष में भद्र जातीय हाथी इत्यादि को का प्रकरण द्वारा जब राजा के अर्थ नियमित हो जाता है पुनः उन्हीं शब्दों से हाथी परक दूसरे अर्थ की प्रतीति और प्रकृति अर्थ के साथ उपमानोपमेय भाव की प्रतीति होती है। राजा के सारे विशेषण हाथों के पक्ष में भी लगते हैं। यह द्वितीय अर्थ की प्रतीति अविधा मूला व्यंजना द्वारा ही होती है। इस व्यंजना व्यापार से युक्त शब्द व्यंजक कहलाता है। इसमें अर्थ की भी सहकारिता रहती है अर्थात शाब्दी व्यंजना में शब्द की प्रधानता व अर्थ की सहकारिता रहती है और आर्थिक व्यंजना में अर्थ की प्रधानता व
शब्द की सहकारिता रहती है।
इसलिए ये शब्दार्थ काव्य में एक दूसरे के पूरक के रूप में हैं। काव्य प्रकाश में शब्द अर्थ का निरूपण नामक द्वितीय उल्लास समाप्त हुआ।